महाबंध पुस्तक पहली लेक्चर नंबर 12 ओम नमः सितेभ्य ओम नमः सितेभ्य विशुद्ध बुद्धि अलथ सौवत्था त्रिभुवन शिरसे हरया पश्यन्तु बड़ारया सवे। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवन। उसमें पुस्तक पहली चल रही है अपनी, और प्रथम प्रकृति बंधाधिकार देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 55 पर आ गए। यहां से काल प्ररूपणा का प्रारंभ हो जाता है। बंध की प्ररूपणा चले, प्रकृति बंध, तो उसमें काल का अर्थ क्या है? लगातार एक जीव कितने काल तक वो बंध कर रहा है, क्योंकि नाना जीवों की अपेक्षा कहेंगे तो कर रहे हैं बंध, कोई ना कोई जीव बंध कर ही रहा है किसी न किसी प्रकृति का, तो उसको तो हमेशा कहेंगे। तो यहाँ एक जीव लगातार किसी प्रकृति का बंध करेगा तो कितने काल तक करेगा, तो ये अलग अलग प्रकृतियों में अलग अलग बातें बता होगी। ज्ञानावरण का बंध कितने काल तक करेगा? हाँ, अनादि से चल रहा है, जब जाके वो दसवें गुणस्थान पार करेगा तो उसका बंध रुकेगा, यानी वो कुछ अंतर्मूर्त या ऐसा उसका जघन्य उत्कृष्ट काल नहीं कहेंगे, इतना कह सकते अनादि शांत, या फिर ग्यारहवे में जाके फिर नीचे आया एक समय में कैसे होगा?
बंद रुक गया
वो अंतर हुआ बंद। अंतर समझते है, यानी बीच में नहीं बंधा, ऐसा कितने काल तक हो सकता है? उन्होंने अंतर बताया। हाँ, यही देखो, हर समय पांचों ज्ञानावरण बनते हैं, कब तक? दसवें के अंत तक। अब कोई जीव ग्यारहवें में ही चला गया, एक समय के लिए बंध नहीं किया, ग्यारहवें में बंध नहीं है ज्ञानावरण का, वेदनीय का है खाली एक हजार, तो एक समय के बाद मर गया तो देव में चले गए, तो देव में तो ज्ञानावरण का बंध शुरू हुआ। एक समय के लिए नहीं बंधा, नहीं बांध के बाद में फिर बांधने लगा तो उसको कहेंगे अंतर। अपनी ये बात काल की चल रही है, तो एक समय वाला काल तो घटित होगा ही नहीं, है ना? अभी हम यहाँ पढ़ेंगे, यानी किसी भी चीज का कहो, किसी मार्गणा का कहो, किसी गुणस्थान का कहो, जब काल चल रहा है तो एक जीव लगातार उसमें कितने काल तक चलेगा? अपना विषय कौन सा चल रहा है? प्रकृति बंध का, तो विशिष्ट प्रकृति कितने काल तक बांधता रहेगा उसकी बात है। हाँ, नाना जीव की बता दिया, वो तो हमेशा ही हो गया, क्योंकि कोई ना कोई जीव तो बांध ही रहा है, ऐसे बिना कोई जीव बांध, कोई भी जीव नहीं बांध रहा ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ भी हम अपना विषय शुरू करते हैं काल प्ररूपणा का। देखो यहाँ लिखते हैं ब्रैकेट में, ताड़पत्र नंबर 28 नष्ट हो जाने के कारण इस प्ररूपणा का प्रारंभिक अंश भी विनष्ट हो गया। प्रकरण को देखते हुए ज्ञात होता है कि यहाँ आदेश की अपेक्षा नर गति का वर्णन चल रहा है और ओघ का वर्णन नष्ट हो गया है, यानी ओघ की अपेक्षा जो है वो शायद काल के बाद जो है नष्ट हो गई। अभी गतियों में बताएंगे, ओग में इन जनरल प्रकृतियों के बंध का काल कितना है? तो ज्ञानावरण तो हमेशा एक जीव को एक जीव की अपेक्षा बात है तो अनादि से बांध रहा है। दर्शनावरण में भी ऐसा ही समझना, अभी उसमें ऐसा हो सकता है दर्शनावरण के उत्तर प्रकृतियां अगर हम देखेंगे तो उसमें नौ तो पहले से बंद रही थी, अब समय दृष्टि हुआ तो छह बंधने लगेंगे और वापस मिथ्या तो में आया तो फिर नौ बंधने लगे। इस तरह से उसको हम वो जो उसका काल हम घटित कर सकते हैं, वो तो बात अभी आएगी आगे, परंतु हम वेदनीय में घटित करेंगे। साता वेदनीय का लगातार बंधा, असाता वेदनीय का लगातार बंधा, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होता है वो मैक्सिमम, एक समय का भी हो सकता है विशिष्ट गति में, भोग में तो नहीं होगा। जैसे नर गति में कोई साता बांध रहा और एक समय में मर गया, अन्य भोग में चला गया, तो नर गति में तो एक समय के लिए बांधे ना उसने, वैसे तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त बांधता था, परंतु बांधना शुरू किया और मर गया तो घटित हो सकता है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे तो ज्यादा ख्याल में आ जाएगी बात। विशेष यहाँ एक जीव की अपेक्षा वर्णन किया गया है, क्योंकि नाना जीव तो हमेशा कोई ना कोई जीव बांधते रहते हैं, तो हमेशा ही होगा, वो सदाकाल कहना पड़ेगा। अब नरक गति में यहाँ का अंश छूट गया था, जो ताड़पत्री नष्ट हो गई थी, इसलिए तो कहते हैं जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट देशों ने 37 सागरोपम है, कुछ कम 33 सागरोपम। अब वो किस प्रकृति की बात चल रही थी वहां पर? मिथ्यात्व का बंध, पर जघन्य से एक समय कैसा होगा? चल आगे पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। और कौन सी प्रकृति की बात चल रहे हैं वो भी हाँ देखो अभी हम पढ़ेंगे। जघन्य से एक समय उत्कृष्ट से देशों का अर्थ समझते हैं, देश यानी कुछ, ऊन यानी कम, कुछ कम 33 सागरों में क्या बंध आयु तो अंतर्मूर्त तक ही बनती है ना, कुछ कम 33 सागरों तक बंध रहा है। एक जीव की अपेक्षा तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंधकाल 84,000 वर्ष, ये कहाँ की आयु है? पहले नरक की, समय दृष्टि की मिनिमम आयु है।
पहले नरक में समय दृष्टि,
तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जो जीव बंध आयु तो अंतर्मूत तक की बनती है ना, कुछ कम 33 सागरोपन तक बंध रहा है। एक जीव की अपेक्षा तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य बंधकाल 84,000 वर्ष, ये कहाँ की आयु है? पहले नरक की, समय दृष्टि की मिनिमम आयु है।
पहले नरक में समय
तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला जो जीव है, देखो कोई भी जीव पहले नरक में सम्यक्त्व के साथ जन्मता है तो इससे कम आयु वाला नहीं होता, ये मिनिमम आयु है उसके लिए। जैसे उसने बांधी थी मैक्सिमम आयु 33 सागर की नरक की, तो हम कहेंगे मिनिमम 10,000 की हो जाती है ना, नहीं, ये समय दृष्टि उसके लिए मिनिमम इतनी है। तो जघन्य बंध का 84,000 वर्ष जैसे श्रेणी का हुआ तथा उत्कृष्ट साधिक 3 सागर प्रमाण है। तीसरे नरक की जो सात है, वहाँ तो उनकी उत्कृष्ट आयु नहीं होगी, यानी तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले को वो उत्कृष्ट आयु नहीं होगी, शायद अभी पढ़ेंगे हम। साधिक 3 सागर प्रमाण, प्रथम नरक से छठे नरक पर्यंत प्रथम दंडक का बंध काल जघन्य से 10,000 वर्ष एक सागर यानी दूसरे नरक का जघन्य एक सागर, तीसरे नरक का जघन्य 3 सागर यानी वो तो तीसरे का उत्कृष्ट 7 सागर है, वो चौथे का जघन्य कहेंगे, उसमें एक समय बढ़ाते, परंतु यहाँ इन जनरल बात की है। तो चौथे का जघन्य 7 सागर लिया, वो तीसरे का उत्कृष्ट है, यानी वहां की आयु ली है उन्होंने। तो लगातार ये कौन सा मिथ्या दृष्टि ले लो, मिथ्यात्व का बंध हो रहा है ऐसा कह सकते ना, अनंत अनुबंधी है जो हमेशा बंधने वाले उसका वो कहेंगे। हम ये चौथे का 7 सागर जघन्य बताए, पांचवे का 10 सागर जघन्य, छठे का जघन्य 17 सागर से कुछ अधिक तथा उत्कृष्ट, अपने अपने नरक की स्थिति प्रमाण जानना चाहिए, अर्थात क्रमशः 1 सागर पहले नरक के, दूसरे की 3 सागर, तीसरे की 7 सागर, चौथे की 10 सागर, पांचवे की 17 सागर और छठे की 22 सागर। ये प्रथम दंडक कहा, साता दंडक में देखो, ऊपर से देखेंगे, ऊपर बंद जगन्य कहा ये उत्कृष्ट कह रहे हैं, हम ऊपर का और नीचे का एक एक ले लेंगे, उसको आप एक एक संख्या उसको ले लो, वहाँ एक नंबर डालो। तीसरे लाइन में प्रथम दंडक का बंद काल जगन्य से 10,000 वर्ष, प्रथमादि छठे तक की बात बता रहे हैं, यहाँ एक नंबर डाला आपने, उसी के साथ दूसरी उसके 2 लाइन नीचे क्रमशः 1 सागर यानी उत्कृष्ट स्थिति जो है उसको भी एक नंबर डालो, यानी ये प्रथम नरक के लिए जघन्य 10,000 उत्कृष्ट 1 सागर। ख्याल में आई बात? अब आगे ऊपर जो है चौथे लाइन में 1 सागर है वो दूसरे की जघन्य आयु, अब यहाँ दूसरे की उत्कृष्ट आयु 3 सागर, उसमें 2 आंकड़ा लिखना। अभी ऊपर 3 आंकड़ा लिखना, तीसरे नरक की जघन्य 3 सागर, नीचे 3 आंकड़ा लिखना, तीसरे के उत्कृष्ट 7 सागर। ऊपर चलो, अभी चौथे के लिए जघन्य 7 सागर है और चौथे की उत्कृष्ट आयु 10 सागर है, पांचवे की जघन्य 10 सागर है और पांचवे की उत्कृष्ट 17 सागर है, छठे की जघन्य 17 सागर है और छठे की उत्कृष्ट 22 सागर है। अब सातवें की कहनी पड़ेगी, सातवें की जघन्य कितनी होगी? 22 सागर और उत्कृष्ट 33 सागर। अब साता दंडक में तिर्यंच गति त्रिक में प्रविष्ट जीव का बंद काल जघन्य से 1 समय उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त प्रमाण है। साता वेदिनी प्रकृति बनती है तो तिर्यंच त्रिक यानी नरक को छोड़कर तिर्यंच गति मनुष्य गति देवगति उनमें जघन्य से 1 समय तक बंद होगा, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त तक होगा। स्त्यान वृत्ति दंडक का बंद काल नरक गति की ओघ रचना के समान है। वो उदय की बात आपको याद है या बंद की चल रही है? और वो 6 मास उदय लगातार सहस्रार स्वर्ग में देखा, और यहाँ असाता का उत्कृष्ट उदय काल सातवें नरक में 33 सागर देखा, परंतु वहां भी बंध साता असाता का होता रहेगा। अभी वो इसमें नरक गति को इंक्लूड नहीं किया है उन्होंने, हाँ अभी पहले से क्या निकल गया हमें पता नहीं है, पहले उन्होंने क्या क्या बताया वो पता नहीं है ना, अभी आगे चलकर पढ़ेंगे तो ख्याल में आ जाएगी बात। यहाँ कह दे स्त्यान वृद्धि दंडक, स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला ये तो अनादि से बन रही है, समय दृष्टि हो जाएगा तो नहीं बंधेगी, फिर मिथ्यात्व में आया तो बंधेगी, और फिर अंतर्मूर्त में समय प्राप्त किया तो उसका जघन्य काल अंतर्मूर्त होगा कि नहीं? अंतर्मूर्ति जब तक मिथ्यात्व में रहा तब तक बंद कर रहा था, समय दृष्टि हुआ तो बंद का भाव हुआ, अंतर्मूर्त होगा उसका। तिर्यंच मनुष्य देव, हाँ, क्योंकि यहाँ उन्होंने एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त बताया है। नारकियों में क्या बताया था पता नहीं है उन्होंने। विशेष यह है कि यहाँ अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए, यानी नरक गति में स्थान वृद्धि का बंद कितने काल तक अधिक से अधिक हो सकता है, तो अपने प्रत्येक नरक में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति का, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि ही रहा तो स्थान वृद्धि तक तो बांध ही रहा है, सम्यक दृष्टि हुआ तो बीच में बंधना रुक जाएगा। अगर मिथ्या तो में ही रहा टोटली, तो जिस नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है उतना उसका बंध काल कहेंगे। विशेष, ओग रचना वाला ताड़पत्र का अंश नष्ट हो गया है, अतः ओग रचना अज्ञात है। मिथ्या तो दंडक में इसी प्रकार जानना चाहिए जैसे स्थान वृद्धि में बताया था, जो मिथ्या दृष्टि है तब तक मिथ्यात्व का बंध चलता रहेगा, तो जिस नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है उतने काल तो लगातार मिथ्यात्व का बंध है एक जीव को। आप कहेंगे बाद में भी होगा ना, परंतु वह नरक गति नहीं होगी, यह नरक गति की अपेक्षा बात चल रही। पुरुष वे दंडक में अपनी अपनी स्थिति प्रमाण, किंतु कुछ कम बंध काल है। पुरुष वेद दंडक यानी पुरुष वेद का ही बंध कर रहा है, ऐसा कब होगा बोलो, समय दृष्टि, तो कुछ कम इसलिए लिया कि वहां जाने के बाद वो जो सम्यक तो प्राप्त किया है, तो सम्यक तो प्राप्त, देखो मिथ्या दृष्टि भी पुरुष वेद को तो बांध सकता है परंतु कायम पुरुष वेद को नहीं बांधेगा, कभी पुरुष वेद बांधेगा, कभी स्त्री वेद बांधेगा, कभी नपुंसक वेद बांधेगा, परंतु जो सम्यक दृष्टि ही रहा तो ये लगातार पुरुष वेद बांधता रहेगा, है ना, क्योंकि नपुंसक वेद के बंधे विच्छित्ति पहले में हुए, नरक गति नहीं, नरक गति के जीवन की अपेक्षा बात है। स्त्री वेद के बंधे विच्छित्ति कहाँ होती है, दूसरे में, तो अभी जो तीसरे में या चौथे में है, लगातार तीसरे में तो अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहता, तो चौथे में लगातार कितना रहा, कुछ कम उसकी उत्कृष्ट स्थिति, कुछ कम, हाँ, अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति कही मैंने, सम्यक तो से नहीं गया है नरक में, कुछ कम अपनी उत्कृष्ट स्थिति इसलिए कहा, अलग अलग नरकों में बताना है तो
पहले नरक में एक सागर पूरा होता,
एक सागर पूरा रहेगा क्या सम्यक दृष्टि वहाँ, ये पता नहीं, सम्यक दृष्टि पूरे साथ कुछ कम सागर होगा तो भी कुछ कम है,
कुछ कम है लेकिन एक सागर होगा,
नहीं एक सागर से कुछ कम हो जाएगा ना,
पूरा एक सागर की जो आयु है वो एक सागर के लिए,
हाँ वो आयु के साथ है, नहीं यहाँ जो कुछ कम लिखा है ना, कुछ कम उत्कृष्ट स्थिति वो सब जगह लागू होगा, समय दृष्टि भी क्या है उसकी कुछ कम है, और ये ज्यादा मिथ्या दृष्टि पूरी सागर थी परंतु उसने एक अंतर्मूर्त के बाद वहाँ समय को प्राप्त किया तो कुछ कम हो गई ना, कुछ कम काल तक लगातार पुरुष वेद बांधा उसने, यानी अपने अपने नरक में हरेक नरक में अलग अलग बताना है तो कुछ कम। दो आयु यानी मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंध काल ओक के समान है। अभी यहाँ तो हम समझ सकते हैं कोई भी आयु कितने काल तक बनते, कितने साल तक बंधेगी, उतने काल तक आयु बनती रहेगी। आयु का बंध कितने काल तक होता है लगातार, आयु बंध प्रारंभ हुआ कब बांधता है वो नहीं मैंने पूछा, लगातार कितने काल तक बांधेगा, एक अंतर्मूर्त उससे ज्यादा नहीं, वो जगन्य भी हो या उत्कृष्ट भी हो, अंतर्मूर्त प्रमाण काल तक लगातार आयु का बंध होता है। इसलिए ये जो दो प्रकृतियां ली, कौन सी नारकी कौन सी आयु बांधता है, मनुष्य आयु या तिर्यंच आयु, यहाँ सातवें नरक का भेद नहीं बताया है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध काल यानी लगातार बनती है प्रथम पृथ्वी में जघन्य से 84,000 वर्ष, और उत्कृष्ट से क्या होता बताया, देशों ने एक सागर, यानी उसकी पूरी सागर तक आयु नहीं होगी वहाँ की, कुछ कम वाली होगी। कितना? हाँ यानी हाँ यानी उतने काल तक वो सम्यक्त के साथ आया हुआ ऐसा जो लेना तो उसको कुछ कम एक सागर होगा, पूरी एक सागर वाली उसकी आयु नहीं होगी। विशेषार्थ, इस कथन से विदित होता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंधक नरक में कम से कम चाहिए था ना, वो कम से कम चाहिए था, ये कम से कल हुआ था, उसको कुल कहा था, कुल कर दिया, कम से कम चाहिए। एक कल का उन्होंने कम करने के बदले कुल कह दिया, कम से कम 84,000 वर्ष की आयु को प्राप्त करेगा। उदाहरणार्थ शैनिक महाराज के जीव ने नरक में जाकर 84,000 वर्ष की आयु प्राप्त की है, नरक में जाकर प्राप्त किए ना, यहाँ से वो तो आयु 84,000 वर्ष करके वहां गया है, अभी कथन पद्धति में फेर हो गए। दूसरी पृथ्वी में जघन्य बंधकाल साधिक एक सागर, क्योंकि वहां की साधिक एक सागर क्यों कहा, वहां पहले नरक की जघन्य आयु कितने, एक सागर और एक समय, तो एक सागर और एक समय तो सम्यक्त के साथ वहां जाएगा नहीं दूसरे नरक में, वहां जाने के बाद शरीर पर्याप्ति पूरी करेगा तब जाके सम्यक्त और प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंधन चालू करेगा, तो सागर में कुछ अधिक हो गया ना, तो साधिक एक सागर और उत्कृष्ट किंचित उन तीन सागर है। तो एक समय में बंद करेगा
नहीं, तो शादी एक साथ
में बताया, वही एक समय भी शादी हुआ और एक अंतर्मूर्त भी शादी हुआ,
मिनिमम बंद कितने टाइम पर करेगा? अच्छा मिनिमम आयु वहाँ पे जो समय जो उत्पन्न होगा उसकी एक साथ से शादी बंद नहीं आगे उससे ज्यादा आयु नहीं रहेगा, क्योंकि अंतर्मूल पश्चात
वहाँ के उत्कृष्ट कितने किंचित उन तीन सागर लिया,
नहीं जघन्य बंधकाल साधिक एक सागर लिया,
तो एक सागर से ज्यादा
जो तीर्थंकर प्रकृति वाला उत्पन्न होगा उसके पहले नरक में जैसे 84,000 देखा जैसे यहाँ पे साधिक एक सागर लेना
वैसे लेना यानी वहाँ शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर उसने बंध प्रारंभ किया तो वहाँ से जो बंध काल है वो साधिक एक सागर है, तो उसकी उसमें एक अंतर्मूर्त बढ़ा दो उतनी तो हो सकती है ना वहाँ की।
और उत्कृष्ट में कुछ कम
किंचित कम तीन सागर। अब तीसरे पृथ्वी में जघन्य साधिक तीन सागर और उत्कृष्ट भी साधिक तीन सागर, यानी पूरे 7 सागर उन्होंने नहीं लिया, 3 सागर साधिक कर दिया। हाँ वो साधिक भी साधिक का प्रमाण ज्यादा होगा, परंतु ये बात पहली बार यहाँ हमने सुनी। हाँ देखो विशेषार्थ बता रहे, तीसरी पृथ्वी में 7 सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति पाई जाती है, यानी वहां की उत्कृष्ट आयु, अतः ऐसा प्रतीत होता है वहाँ उत्पन्न होने वाला जीव किंचित ऊन 7 सागर पर्यंत सम्यक्त्वी रहने से उतने काल पर्यंत तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है, किंतु इस संबंध में यह आगम बताता है कि उक्त प्रकृति का उत्कृष्ट बंध काल साधिक 3 सागर है, इससे अधिक बंध काल की कल्पना करना आगम बाधित होगा। यहाँ लिखा ना कस किन्नी सागरों में दे सुनाने, जहन तिन्नी सागर साधी रही है, कस तिन्नी सागर साधी रही है। आगे देखते हैं, सातवीं पृथ्वी में नारकियों के ओभवत जानना चाहिए। विशेष है कि दर्शनावरण तीन, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चार और तिर्यंच गति त्रिक का जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त है। तिर्यंच गति त्रिक कहाँ आया? अच्छा, यानी तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्व आई। तो यहाँ हमने पहले तिर्यंच गति त्रिक देखा था ना, वहां पर भी अर्थ अलग होगा, वहां प्रकृति की बात है। पहले हमने देखा था ना नरक गति में 55 पेज पर, साता दंडक में तिर्यंच गति त्रिक में प्रविष्ट जीव का।
नहीं,
वहाँ नहीं होता, तिर्यंच गति त्रिक में प्रविष्ट, गति त्रिक में प्रविष्ट है वहाँ पर।
एक समय वायु का प्रबंध नहीं
होता, उद्योग का एक समय तक होता है, परंतु तिर्यंच गति त्रिक लिया एक समय के लिए हो सकता है ना बंद।
नहीं,
तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूरी उद्योग ले सकते हैं। अभी पता नहीं ना, हमने पहले दंडक पढ़े नहीं उनके पूजा है। अभी हम यहाँ आते हैं, जब आगे की हाँ गति त्रिक ने वो प्रकृतियों की बात है, यहाँ ये ख्याल में आती बात। तिर्यंच गति त्रिक का जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त है। अब यहाँ गति त्रिक में यहाँ आयु ले सकते हैं क्योंकि बंद जगत ने बंद। तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच आयु जगन में एक अंतर्मूर्त तक बंदेगी ना। क्यों अंतर्मूर्त तक बंदेगी? वहां कोई समय तो प्राप्त करेगा तो अंतर्मूर्त तक, यानी वो फिर मिथ्यात्व में आएगा, फिर सम्यक तो होगा, तो अंतर्मूर्त तक उसने बंधक किया, ऐसा हो सकता है। मनुष्य गति देखो, तिर्यंच गति त्रिक यानी वो निज गोत्र लेना क्यों वहां पर? मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूरी उच्च गोत्र का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। निज गोत्र लेना, त्रिक में आयु नहीं लेना, निज गोत्र लेना। मैंने बोला आगे हम चल और पेंसिल से करना कोई भी बात है, गति अनुपूरी और नीच गोत्र तिर्यंच गति के साथ बनता है ना, वहां पर भी नीच गोत्र ही लेना चाहिए। तिर्यंच गति त्रिक में तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी नीच गोत्र, अब यहाँ आते हैं। आगे आगे पढ़ेंगे ना हम एक एक गति में, तो ये क्लियर होते चले जाए। तो मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूरी उच्च गोत्र का जघन्य काल भी अंतर्मूर्त है, बंध का जघन्य काल कब होगा? ये कब होगा? सातवें नरक में। मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूरी और उच्च गोत्र का बंध लगातार चलता रहे तो मिनिमम एक अंतर्मूर्त तक बांधता है। नरक में सातवें नरक वाला जीव मनुष्य गति कौन बांधता है? छठे नरक तक का मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य गति बांध सकता है, सम्य दृष्टि या तीसरा गुणस्थान। सातवें नरक देखो देखो हम बताते हैं, सातवें नरक के लिए एक नियम है। क्या नियम है? पहले नरक के लिए नियम देखेंगे। पहले से लेकर छठे नरक तक के जीव मिथ्या दृष्टि भी हो, सासाधन वाले भी हो, ऊपर के तो बांधते ही है, तो मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूरी उच्च गोत्र का बंद कर सकते हैं। एक से चौथे गुण स्थान वाले नारकी है ना, पहले से छठे नरक तक के नारकी, यानी या तो मनुष्य गति बांधेंगे या तीन इंच गति। मिथ्या दृष्टि की बात चल रही, पहले से छठे नरक के नारकी मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य गति भी बांध सकते हैं, तीन इंच गति भी बांध सकते हैं, ये रूल है। परंतु सातवें के लिए क्या विशेषता है, वहां मिथ्या दृष्टि और साधन है, तिर्यंच गति को ही बांधेंगे। तो सवाल है, क्या सातवें नरक के नारकी मनुष्य गति को बांधेंगे ही नहीं? बांधेंगे। कौन बांधेंगे? तीसरे चौथे गुणस्थान वाले, क्योंकि तिर्यंच गति की वो बंध विच्छित्ति हुई ना दूसरे में। हाँ, तीन इंच गति को ही बांधते ही लगाना, वो मनुष्य गति नहीं बांध सकते। इसलिए यहाँ क्या लिखा, सातवें पृथ्वी का नाम अलग लिखा और उसके लिए रूल बताया,
और वो मनुष्य गति ऑप्शन बांध सकते।
कौन से? वो मात्र मनुष्य गति को ही बांधेंगे, वो तिरंज गति नहीं बांधेंगे। तो देखो, अभी हमने पढ़ा, वो फिर दोबारा पढ़ते हैं। सातवीं पृथ्वी में वहां से पढ़ेंगे, नारकियों में ओभवत जानना विशेष यह है कि दर्शनावरण की तीन, ये कहाँ बंधेगी? पहले दूसरे गुणस्थान में। मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चार, मिथ्यात्व तो मिथ्यात्व गुणस्थान में बंधेगा, अनंतानुबंधी पहले दूसरे गुणस्थान में बंधेगा, और तिर्यंच गति त्रिक वो भी पहले दूसरे गुणस्थान में बंधेगी। तो जघन्य बंध काल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त तक ये जीव मिथ्यात्व में आया है, वापस समय दृष्टि हुआ बीच में, ऐसे लगा दो चार बार भी, अनेक बार भी समय तो प्राप्त होगा ना, इसको छूट भी सकता है, फिर प्राप्त भी हो सकता है। और मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्व और उच्च गोत्र, उसका भी जघन्य काल, ये जघन्य की ही बात चल रही, उत्कृष्ट की नहीं, यानी वो अंतर्मूर्त तक समय दृष्टि रहा तब तक उसने मनुष्य गति बांधी। ये तीनों ही लेना साथ में। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति नहीं है, यहाँ तो सातवें में तो है ही नहीं, चौथी पांचवी छठी पृथ्वी में भी तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। अब तिर्यंचों में बताएंगे, नारकी की बात हो गई, पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, मिथ्यात्व, आठ कषाय, भय जुगुप्सा, तेजस कारमान शरीर, वर्ण चार, अगुर लघु उपघात निर्माण और पांच अंतरायों का जघन्य से बंध काल शुद्र भव ग्रहण। क्या कहना चाहते हैं? छह दर्शनावरण इसलिए लिया कि वो तो स्थान वृद्धि का अलग से बताना चाहते हैं, वो भी बंधेगी इनके, परंतु छह लिया यहाँ पर। और किसके लिए? तिर्यंच इन जनरल, पहले में पहले तिर्यंचों में सामान्य से बता रहे हैं। तो ये सभी प्रकृतियां किसके बंध रही है? तो मिथ्या दृष्टि के तो बंध ही रही है सब। ऊपर की इसलिए नहीं पता है कि वहां पांच गुण स्थान है, सामान्य से बात कर रहे हैं, तो ये तो सभी पूरे तिर्यंचों के ग्रुप में इतनी, यानी बाकी लोगों को भी बांध रही है, परंतु कम से कम बांधने वाला काल कौन सा है? तो जिसको हम कहेंगे लब्धि अपर्याप्त, जिसको कहेंगे क्षुद्र भव, गुणस्थान पहला ही है, तो उसका काल ही पूरे भव का ही काल इतना छोटा है। तो ये इसके जघन्य से बंध काल कितना है? तो एक क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, यानी क्षुद्र भव वाले और भी प्रकृतियां बांधेगी ना, पूरे सोलह कषाय को बांधेगी। परंतु ये आठ की बात इसलिए उठाई कि आठ को बांधने वाले तो पांच तक आठों को बांधने वाले, उन सभी जीवों में मिनिमम कौन बांध रहा है? क्षुद्र भव वाले। क्षुद्र भव इतना ही बांधता है ऐसा उसका अर्थ नहीं है, परंतु तिर्यंच इन जनरल बात करेंगे तो ये आठ का बंध कौन कर रहे हैं? तो पांचवें गुणस्थान तक के सभी तीन इंच कर रहे हैं। अब पहले से पांचवे तक के सभी कर रहे, उनमें कम से कम बंध काल किसका है? जिसकी आयु मिनिमम है उसको है। तो मिनिमम आयु वाले कौन है? तो क्षुद्र भाव। यहाँ तक बात ख्याल नहीं आई? हाँ, वो भी अंतर्मूर्त ही होता है, उसको भी छोटा अंतर्मूर्त ही है वो, क्योंकि क्षुद्र भाव में भी आयु का बंद करेगा। आयु का बंद करने के बाद वो भी वन थर्ड में आयु बंधेगी, यानी सब मिलकर भी अंतर्मूर्त ही कहना पड़ेगा। नरक में हाँ, तो वो जगन्य अंत
जगन्य काल क्षुद्र भाव का, ये क्षुद्र भाव भी अंतर्मूर्त है, ये अन्य अंतर्मूर्त से बड़ा होना चाहिए ऐसा मुझे।
क्यों?
क्योंकि बहुत आगे आपने जो बताया
नहीं, वहाँ का जो जगन्य काल है तो मिथ्या तो में रहने का जगन्य काल वहाँ लेना, या सम्यक तो में रहने का जगन्य काल लेना, उसकी इसकी हम कंपेयर नहीं कर सकते अभी तो। अल्प बहुत आएगी तो वहाँ कर सकते हैं, यहाँ तो क्षुद्र भाव इसलिए कहा, उनकी आयु ही इतनी अल्प होती है इसलिए बताया।
निर्माण छोड़ा है,
निर्माण कहाँ छोड़ा है? निर्माण को लिया है, अगुण लघु उपघात निर्माण।
अगुण लघु
उपघात क्यों लेना? परघात तो निरंतर बंदी नहीं है, वो ध्रुव बंदी नहीं है, ये ध्रुव बंदी प्रकृतियां लिया है, जो पांचवे गुण स्थान तक भी बनती है इसे सभी लिए। आपका क्या कहना है?
तो पर्दा तो कर सकता है, उच्छ्वास का तो वो अंतर्मुख मिनिमम हो जाएगा ना,
परंतु वो तो क्या ये बांधेगी ऐसा है? उच्छ्वास प्रकृति कौन बांधेगा? जो एक इंद्रिय पर्याप्त का बंद कर रहा है, जो 23 वाला बंद कर रहा है, उसको उच्छ्वास पर्याप्त कहाँ, उच्छ्वास प्रकृति कैसे बंधेगी? ये तो कौन सी लिए है जो उतने ही नहीं, केवल निरंतर बंदी नहीं, पांचवे वाले तक, पहले गुणस्थान से पांचवे गुणस्थान तक जो सभी जीव जो बांधते हैं उसकी बात। उच्छ्वास वाला वही जीव बांधेगी जो पर्याप्त नाम कर्म बांध रहे, जो अपर्याप्त नाम कर्म बांध रहे हैं उनके उच्छ्वास प्रकृति का बंधन नहीं होता उसके साथ। अभी अपने बंधस्थान चल रहे ना कर्मकांड में, 23 वाला जो बंधस्थान है उसमें उच्छ्वास का नाम नहीं है, है? अब उत्कृष्ट कितना है? तिर्यंचों में उत्कृष्ट बंधकालीन सभी का, यानी तिर्यंच में उत्कृष्ट काल कितना रहने का? तो कहते हैं एकेंद्रियो में असंख्यात पुद्गल प्रयोग, उसमें तिर्यंचों के अन्य भाव भी डाल दो फिर भी कितना होगा? तिर्यंचों में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, जो अनंत काल है, एक पुद्गल परिवर्तन का काल भी अनंत है। और ये कितने असंख्यात है बोलो? ये असंख्यात का प्रमाण कितना है? कितने पुद्गल परिवर्तन है? अवली के असंख्यात विभाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन होते हैं, यानी एक पुद्गल परिवर्तन, दो तीन चार, ऐसे कितने असंख्यात, उस असंख्यात का प्रमाण कितना है? आवली का असंख्यात का भाग। हाँ नहीं नहीं, वहाँ पांचों तक बनती है ना इसलिए। बराबर है, तो एक इंद्रियों में तो ये बंद ही रही है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, ये तिर्यंचों में रहने का उत्कृष्ट काल है। अब उसमें वो सम्यक दर्शन के भाव भी उसके अंदर ले लो ना, तब भी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित होगा, यानी बीच में उसने कभी पांचवा गुणस्थान भी प्राप्त किया, फिर एक इंद्रिय में भी गया, फिर द्विंद्रियादि में भी गया, ये सबका काल मिलाकर उसको लिया है।
यहाँ जो पांच ज्ञान दर्शन आदि जो आठ दशा है, तो जहाँ 12 दशा या 16 दशा की बात न कर सकते, 8 दशा की जिस संयुक्त मालिक को लेना है तो ये सब एप्लीकेबल केंद्रीय से लेकर कंटिन्यू तक
ये तिरियन चौक के सभी भेद लिए
लेना है। तो ये जो उत्कृष्ट काल बताया तो सिर्फ एक कोई एप्लीकेबल होगा ऐसा
नहीं, पूरे तिरियन चौक तिरियंचो में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात खुदगल परिवर्तन है। अभी वो जो
तिरिया 8 बजे की जगह 12 बजे रखो ना, 16
बजे क्या
वो तो लेंगे ना, 16 का समय भी होगा फिर उनको भी इंक्लूड करना है। तिरियंच इन जनरल जो सब में लागू होता है वैसी प्रकृतियां पहले यानी बाकी तो होगी। वैसे तो आप कहेंगे जो अनादि से नित्य निगोद में वो तो अनादि अनंत काल भी रहेगा, परंतु यहाँ जो सादि शांत काल कहने में आता है जब हम काल देखते हैं तो कहीं अन्य भव से तिरियंच में गया और वापस उसको अन्य गति मिली ही नहीं किसी गति में, ना मनुष्य में आया ना कहीं देव में गया, तो कितने काल तक होता है तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल। उसमें कभी 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 वो पंचेंद्रिय भी होगा, कभी कभी उसने बीच में समय को प्राप्त करके वापस फिर उसमें चला गया, फिर भी इनका बंधन तो होता ही रहा कायम, इसलिए उसको 8 को लिया। वैसे 16 को लेते तो भी ये काल घटित होता है, बिना समय को प्राप्त किए उसलिए वो तो बांधता रहा, ऐसा भी होगा ना। अभी आप कहेंगे 8 को लिया वो मिथ्यात्व को फिर क्यों लिया, मिथ्या तो को नहीं लेना चाहिए थे, पांचों गुण स्थान तो बंद कहाँ बंद है उसका, ख्याल में है ना बात, यानी वो मिथ्यात्व का तो बंध नहीं है उसमें, फिर भी उन्होंने मिथ्यात्व को यहाँ इंक्लूड कर दिया।
मिनिमम था ये
एक क्षुद्र भव की अपेक्षा उसमें घटित करना था और उत्कृष्ट से अनंत का काल जो बताया है वो भी तिरियंचो में रहने का उत्कृष्ट था। अभी अन्य जो लिस्ट पढ़ेंगे हम तो ये क्लैरिटी अधिक होगी। अब कहते हैं स्त्यान वृद्धि त्रिक अनंतानुबंधी 8 कषाय तथा औदारिक शरीर में भी इसी प्रकार समझना चाहिए, यानी अभी हमने जो लिस्ट पढ़ी उसमें 6 दर्शनावरण के बदले 9 दर्शनावरण ले लो और 8 कषाय के बदले 16 कषाय ले लो और क्योंकि उसका वहाँ जघन्य बंध काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण बताया
और
और यहाँ पर जो है स्त्यान वृद्धि त्रिक अनंतानुबंधी 8 कषाय औदारिक शरीर में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। देखो ये बात है कि दूसरे गुणस्थान वाला भी उसको बांधेगा ना, उसकी अपेक्षा
एक समय हो जाएगा ना, एक समय में बंध चालू किया वरुण हो गया दूसरी गति में चला गया तो ये तीन
आप इतना फास्ट बोलेंगे इनको कुछ नहीं समझ में आता है। देखो पहले 2 संख्या लिखी ना हम नीचे पढ़ेंगे, पहला एक आंकड़ा पढ़ेंगे असंख्यात पुद्गल परावर्तन के लिए एक नंबर डाला था फुटनोट के लिए मिला नीचे फुटनोट तिरिक्ख गति है यानी तिरियंच गति में तिरिक्खेसु तिरियंचों में तिरियंच गति में तिरियंचों में क्यों कहा, क्योंकि तिरियंच गति के कितने भेद होते 5, तिरियंच यानी सामान्य तिरियंच, फिर पंचेंद्रीय तिरियंच, पंचेंद्रीय तिरियंच पर्याप्त योनिमति और फिर लब्धि अपर्याप्त, इसलिए तिरियंच गति में तिरियंचों में कहा यानी सामान्य तिरियंच की बात है। मिथ्या दृष्टि केवल चिरम काला दो होती, मिथ्या दृष्टि कितने काल तक रहता है, एक जीवम पड़ुच्छ पड़ुच्छ ने अपेक्षा एक जीव की अपेक्षा जघन्य न अंतोमोत्तम, जघन्य काल मिथ्यात्व में रहने का एक अंतर्मूर्त और उपकस्य ने उत्कृष्ट से अनंत कालम अनंत काल है वो कितना अनंत है, असंख्य च पुद्गल परिवर्तन यानी असंख्यात पुद्गल परिवर्तन मात्र अनंत काल। अब अभी जो हमने स्त्यान वृद्धि त्रिक आदि की बात पढ़ी थी तो वहां कहते शासन सम्मादिट्टि, इनका अलग से ग्रुप क्यों बनाया? क्योंकि ये जो पहले जो बातें हैं ये अनंतानुबंधी का, तो दूसरा गुणस्थान को भी इंक्लूड कर दिया। अनंतानुबंधी स्थान वृद्धि वगैरह तो दूसरे गुणस्थान को भी इंक्लूड किया, ऊपर के उसको नहीं लेना है। तो शासन सम्मादिट्टि केव चिरम काला दो होती एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न एक समूह। शासाधन सम्य दृष्टि कितने काल तक होता है? एक जीव की अपेक्षा जहन्य जघन्य से एक समय तक होता है। देखो स्थान वृद्धि त्रिक, अभी जैसे यहाँ बताया स्थान वृद्धि त्रिक का बंध का काल कितना है, तो उसको भी छह दर्शनावरण के साथ ले लिया। यानी उसमें भी उत्कृष्ट असंख्यात पुद्गल परावर्तन जघन्य यहाँ अंतर्मूर्त के लिए ये कहा कि यहाँ जघन्य बंध का लेख समय हो सकता है। हाँ उत्कृष्ट दोनों का समान है और जघन्य एक समय बताया। क्या कहा?
अनंतानुबंधी।
देखो अभी इन्होंने कैसे बताया, कोई तिर्यंच है उसने प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त किया, तभी तो उसको अनंतानुबंधी का बंधन नहीं हो रहा था। बराबर, तो अनंतानुबंधी का बंधन नहीं हो रहा था तो शासाधन में गिर गया। शासाधन में एक समय के लिए वो बंध चालू हो गया, शासाधन में आया तो अनंतानुबंधी का बंध शुरू हुआ और एक समय में ही मरकर अन्य गति में चला गया, तिर्यंच गति छोड़ी, तो उसने एक समय के लिए अनंतानुबंधी का बंध किया। ऐसे ही ऊपर के गुणस्थान में स्थान वृद्धि त्रिक का बंध नहीं कर रहा था, शासाधन में आया बंध किया और शासाधन में एक समय में मर गया, वो भी घटित हो गया। तो स्थान वृद्धि त्रिक भी हुआ, अनंतानुबंधी आदि आठ कषाय भी लिए, पांचवे से आएगा तो अप्रत्याख्यान को भी लेना। औदारिक शरीर में भी इसी प्रकार समझना चाहिए। औदारिक शरीर में क्यों? ऊपर के गुणस्थानों में वैकृत शरीर का बंध कर रहा था, यह उदय की अपेक्षा नहीं देवगति बांध रहा था, अब यहाँ आया है गिरकर शासाधन में औदारिक शरीर का बंध कर, क्योंकि भले वो शासाधन गुणस्थान में तिर्यंच गति बांधो या मनुष्य गति औदारिक शरीर का बंध करेगा, इसलिए एक समय के लिए किया और उसकी गति बदल गई। अपनी तो मार्गणा से आगे वो कौन सी बांध रहे वो अपना प्रश्न नहीं है। मैंने प्रथम उपशम वाला गिरकर दूसरे में आया, एक समय बंद करके मर गए, अन्य गति में चले। अन्य कौन से गति में जाएगा नितिन भाई? हाँ अन्य कौन से गति में जाएगा? अन्य कौन कौन सी गतियां हैं? तिर्यंच के लिए तिर्यंच अन्य है क्या? तो मनुष्य और देव, नारकी में जाता है ना शासाधन वाला मरकर, इसलिए मनुष्य और देव लेना यहाँ पर। अब आगे पढ़ेंगे, साता असाता वेदनीय छह नौ कषाय, तिर्यंचों की बात है, दो गति चार जाति पांच संस्थान औदारिक अंगोपांग छह सहनन दो अनुपूर्वी आताप उद्योत अप्रशस्त विहाय गति स्थावरादि चार स्थिरादि दो युगल दुर्भग दुस्वर अनादेय यशस कीर्ति ऐशस कीर्ति का जगन्य बंध काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। ये सभी प्रतिपक्षी प्रकृतियां भी लिए उन्होंने यहाँ पर, कभी साता बनते कभी असाना, तो उसका एक समय में बंध चेंज होकर अन्य रूप हो सकता है क्योंकि ये कैसी है, एक समय तक भी बंद हो सकता है इसका और लगातार अंतर्मूर्त तक भी। कुछ प्रकृतियां ऐसी है कि बंधना शुरू होगा तो अंतर्मूर्त तक बंधेगी बंधेगी, एक समय का बंध नहीं हो सकता, ऐसी भी प्रकृतियां पाई जाती। ऐसी कौन सी प्रकृतियां है कि जो बंधना चालू होगी तो अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी ही, एक समय में नहीं। हाँ बोलो।
आयु
चार। हाँ तीर्थंकर आरग्द्विक, ये तो लगातार अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी बंधेगी नियम से, ये सात प्रकृतियां। हाँ पर मिनिमम इतनी बंधेगी। मिनिमम क्यों कहा, कि किसी ने वो समय तो पहले नरकायु बांध दिए, फिर उसने बंध प्रारंभ किया और फिर अंतर्मूर्त तक तो बंधेगी ही, फिर मिथ्यात में जाके नरक में गए, ऐसा भी हो सकता है ना, इसलिए उसको निरंतर बंदी कहते हैं। अब ये प्रतिपक्ष वाली में एक समय में वो उसका बंध चेंज हो सकता है, किस किस को लिया देखो, साता असाता वेदिनी, छह नौकशाएं में किसको लेना, बोलो छह नौकशाएं में किसको लेना,
तो
कषाय में आयु कहाँ ले गए, दूसरे गुणस्थान की बात कहाँ चल
रही
है, जुगुप्सा तो हम निरंतर, वो तो ध्रुवबंदी है, वो तो ध्रुवबंदी है, तीन वेद में से दो वेद लेना है, देखो वो तो पुरुष वेद तो बाद में लेते हैं ना, पुरुष वेद को हम बाद में लेंगे, नहीं समझे, पुरुष वेद पहले दो गुण स्थानों में पुरुष वेद का बंद ऑप्शनल है और ऊपर के गुणस्थानों में तो लगातार बंधेगी, यह हम कौन से ले रहे हैं ऑप्शनल, जिसकी बंध विच्छित्ति हो रही है दूसरे में या कहीं पर भी, ऐसे हम ले रहे हैं। देखो फिर से साता असाते हैं वो तो हमेशा ही प्रतिपक्षी तो ले लेना, यहाँ तो चौथे गुणस्थान तक दोनों ही बंधेगी, छह नौकशाएं में यानी हास्यरति का युगल या शोकरति, यानी हास्यरति और शोकरति, और स्त्री वेद नपुसक वेद लेना है, क्योंकि नौ नौकशाएं में से अभी हम ऊपर की लिस्ट देखो, तेज पहली लाइन में तीरियन चौंके भय जुगुप्सा लिया था वहां पर, तो यहाँ फिर दोबारा भय जुगुप्सा नहीं लेंगे, और इसके बाद वाले सत्तान पेश में पुरुष वेद का अलग नाम लिया है। हाँ तो यहाँ बाकी बचे हुए यानी हास्य युगल शोक युगल यानी शो करत और स्त्री पुरुष स्त्री नपुसक है, अब दो गति ऊपर तो देव गति होगी, नरक गति को तो छोड़कर आए ना अभी पहले के नहीं पहले, तो देखो नार की तो नरक गति नहीं बांध सकता, ना ही नार की देवगति बांध सकता है, सॉरी सॉरी तिरंज में, तिरंज की बात चल रही है, नारक में चली गई, तो तिरंजों में जो है देवगति की बात अलग बताएंगे, क्योंकि आगे के गुणस्थानों में उसका बंद होगा। नरक गति में तिरंज को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि चार जाति लिए उन्होंने, जब मनुष्य तीर्यंच लेना पड़ेगा, क्योंकि देवगति नरगति तो पर्याप्त अवस्था में हमेशा तो बंधेगी नहीं, ऐसी बात है ना। तिरंज गति भी अलग है, चार आयु है, तीन इंच गति त्रि। अच्छा, तो ये हमने मनुष्य और नर के लिए ना है। मनुष्य और नर के लिए, क्योंकि देवगति आगे ली, तिर्यंच गति भी बाद में बताई। एक समय में चेंज होता होगा ना, लगातार अधिक से अधिक तो अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है और जघन्य काल, जघन्य बंध काल एक समय है, बंध बदल जाता है उसका। तो ये जो हमने अभी लिस्ट देखी है,
तो ये जो ये दो गतियों सब बताया है वो शासागत के अपेक्षा नहीं बताया कि शासागत जो है एक समय के लिए बंद किया और बरन हो गया,
उसकी
मिनिमम काल अब तक एक समय बताया।
वो शासाधन की बात हमने अनंत अनुबंधी के लिए देखी,
पर यहाँ पे जो दो गति का भी एक समय के लिए बंद होगा, गति का भी।
हाँ क्यों नहीं होगा, गति का बंद तो अंत एक समय में चेंज भी हो सकता है ना। जीव के परिणाम कैसे है, एक समय में कुछ अलग गति बांधी, दूसरे समय में अलग गति बांधी, हो सकता है लगातार अंतर्मूर्त बांधेगा कम से कम एक। हाँ ये आता बुद्धियत वगैरह सारी जो है ना एक समय में बंधने वाली है, ये केवल हमने जो अंतर्मूर्त बनती ही है ये कंडीशन आयु के लिए लगा, वो कंडीशन आहारक द्वीप के लगाना, वो कंडीशन तीर्थंकर के लिए लगाना, अन्य कहीं मत लगाना उसको। अब आगे की लिस्ट पढ़ते हम, 57 पेज पर आ गए। पुरुष वेद, देवगति, वैक्रियक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रियक अंगोपांग, देवानुपूर्वी, प्रशस्त विहाय गति, सुभग सुस्वर आदेय और उच्च गोत्र का जघन्य बंध काल एक समय और उत्कृष्ट तीन पल्य है, उत्तम भोग भूमि का तीर्यंच, तीर्यंचों की बात चल रही ना, तीर्यंच बांध रहे हैं, देवगति को बांध रहे हैं, तो उत्कृष्ट तीन पल्य, ये कौन सा जीव होगा उत्कृष्ट तीन पल्य वाला? आक्षायिक समय दृष्टि, तीन पल्य की आयु के साथ भोग भूमि में जन्मने वाला। क्यों तीन पल्य पूरा लिया है ना यहाँ पर, इसलिए वो समय दृष्टि लेना चाहिए, वहां जाने के बाद वो समय तो प्राप्त करेगा
कुछ कम,
क्योंकि वहां तो वो मिथ्या तो अवस्था में गया है
तो कुछ कम
ये पूरा। हाँ क्षायिक समय दृष्टि है वो कृत्य वेद उस क्षायिक में इंक्लूड कर दिया। ये उत्कृष्ट भोग भूमि समझते, उत्तम भोग भूमि वहां की ये आयु है मैक्सिमम तीन पल्य। वहां की शरीर की ऊंचाई कितनी है अश्विन भाई? 3 कोस, 6000 धनुष। छह हजार धनुष यानी 3 कोस, 2000 धनुष का 1 कोस। हाँ मनुष्य 3 इंच क्यों नहीं, अरे यहाँ मनुष्य से 3 इंच ऊंचे है हाथी भी। अभी हमारे जो 5 फुट 6 फुट का जो प्रमाण है, अभी जिराफ है, ऊंट है, हाथी हमारे से ऊंचे है ना, तो वहां होने में क्या बाधा है? चार आयु और तिर्यंच गति त्रिक का ओघ के समान जानना चाहिए। अभी ओघ है क्या यहाँ पर? ओघ निकल गया, चार आयु का तो अंतर्मूर्त है, तिर्यंच गति त्रिक का उन्होंने इसमें भी नारकियों में कैसे बताया था, एक समय बताया था तिर्यंच गति त्रिक जघन्य से एक समय उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। हाँ
एक समय होता है
अपने कर्मकांड में, कहाँ पर? वेदना में, धवला में,
प्रत्येक
किस में? कर्म कांड में देखना है क्या धौला में देखना है? आप कहाँ की बात है? आपके पास है कल्याण? अब पंचेंद्रिय जाति, परघात, उच्छ्वास, त्रस चार, ये त्रस चार कौन से है मालूम है? त्रसादि चार, यानी चार प्रकृतियां उनके एक साथ नाम लेते हैं, त्रस बादर, त्रस या स्थावर ऐसा लेते ना, तो त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक है, उसके अपोजिट। तो त्रस चार का जघन्य एक समय और उत्कृष्ट, देखो ये क्या क्या बांध रहे हैं, पंचेंद्रिय जाति बांध रहे हैं, परघात यानी वो पंचेंद्रिय पर्याप्त का बंद कर रहे हैं, पर्याप्त है इसलिए उच्छ्वास को भी बांध रहे हैं, त्रस अब यहाँ स्थावर नहीं लेना है, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक का बंद कर रहे हैं, जघन्य तो एक समय वो कोई भी जीव करता है उसकी बात है, और उत्कृष्ट साधिक तीन पल्य प्रमाण है। तीर्यंचों में साधिक तीन पल्ले क्योंकि भूभूमि जाने के पहले की बात, जाने के पूर्व एक अंतर्मुर से उसका बंध शुरू किया उसने, इसलिए साधिक तीन पल्ले, क्योंकि अंतर्मुर पहले से ही वो तो वहां जाते तो उसकी थोड़ी
तो
नहीं नहीं नहीं, ये साधिक तीन पल्ले तीर्यंच में रहते हुए तीर्यंच भूभूमि में गया है, वो समय दृष्टि नहीं लेना, तीर्यंच ऑर्डिनरी कर्म भूमि का तीर्यंच भूभूमि का तीर्यंच हुआ, तो शुभलेशा में नहीं मरता है वो, फिर भी उसके हमने देखा था अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण बद्ध वगैरह करता है ना, उसके उसके परिणाम वैसे मंद परिणाम भी होता, लेशा की बात नहीं लेना, मंद परिणाम ही है,
साइड तो नहीं ले सकते क्योंकि वो तो मनुष्य से
जाएगा, मिथ्या दृष्टि से ही गया, तीर्यंच ही तीर्यंच में गया, यानी कर्म भूमि का तीर्यंच भोग भूमि में गया है ऐसा लेना, और वो पंचेंद्री ही जाएगा, और वो वहां जाने वाला भी अभी उसके विशुद्ध परिणाम है कुछ मरते समय भी, तो कैसे परिणामों में जाएगा वो? वो पंचेंद्रिय जाति बांध रहा है उसका बंद करो, यानी कर्म भूमि का तीर्यंच मरकर भोग भूमि का हुआ, तो जाने के एक अंतर्मुहूर्त पहले से इसका बंद उसने चालू किया था, ये ले ना ना ना
जाएगा।
देखो सम्यक दृष्टि अगर लेंगे तो मनुष्य गति में से वो भेजना पड़ेगा तो साधिक तीन पल्ले नहीं होगा, इसलिए तीन इंच में से तीन इंच में गया, तो मिथ्या तो अवस्था में गया, देखो पंचेंद्रिय तीर्यंच अभी भेद कर रहे, पहले सामान्य में से केवल तीर्यंच कहा था, अब पंचेंद्रिय तीर्यंच पर्याप्त, पंचेंद्रिय तीर्यंच योनिमति में ओग के समान जानना चाहिए, अब यहाँ वो अनंत काल वो नहीं घटित होगा, तो पंचेंद्रिय तीर्यंच कहेंगे तो प्रथम दंडक में जघन्य बंधकाल शुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि मात्र पंचेंद्रिय तीर्यंच का तो उसमें पर्याप्त पर्याप्त दोनों आए, इसलिए शुद्र भव ले सकते, तीर्यंच पर्याप्त था योनिमतियों में जघन्य अंतर्मूर्त, क्योंकि पर्याप्तों की जघन्य आयु एक अंतर्मूर्त होती है, और प्रथम दंड कहने अभी ये ऊपर पंचेंद्रिय तीर्यंचों में
यह
प्रथम दंड कहने, हमने पांच ज्ञानावरण छह दर्शनावरण वो लिया ना, वो लेना हाँ वही वो जो प्रकृतियों की जो लिस्ट बताई थी वो प्रथम दंड। और उत्कृष्ट पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य प्रमाण बंद काल है, यानी वो लगातार पंचेंद्रिय तिर्यंच रहा। अभी पंचेंद्रिय तिर्यंचों में संगी भी लेना, असंगी भी लेना, पर्याप्त भी लेना, पर्याप्त भी लेना। पूर्व कोटि पृथक्त्व है, वो पृथक्त्व की संख्या अलग अलग होगी, तो आठ 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 संगी के, आठ 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 असंगी के, 24 24 48 हो गए, फिर बीच में एक शुद्र भोग किया, और फिर 48 और 48 96 होते हैं। उसके बाद ले अंतिम भव उत्तम भोग भूमि का तीन पल्ले का करना। देखो ये नियम है, लगातार स्त्री पर्याय में आठ भव करता है, कितने पूर्व कोटि का एक एक भव। संगी में भी उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि की हो सकती है, असंगी में भी हो सकती है, तो लगातार आठ भव स्त्री के, आठ पुरुष के, आठ नपुंसक के। संगी में भी आंतरिक 24 हुए, असंगी में भी आंतरिक 24 और 24 48 पूर्व कोटि उसके हो गए। फिर एक बीच में उसने लब्धि अपर्याप्त का भव किया, और फिर 48 उसके भव लगातार हो सकते हैं कर्मभूमि के 48, परंतु लास्ट वाला भव उसको भोगभूमि का रखना। लास्ट में क्यों रखना? क्योंकि भोगभूमि के जीव मरकर नियम से देवगति में जाते, तो उसकी तीरियन जगति वहीं पर समाप्त हो जाने वाली, इसलिए उसको लास्ट में रखो। और उसको क्यों इंक्लूड करना? केवल पूर्व कोटि कहो ना, तो पूर्व कोटि संख्या तो संख्यात है, और तीन पल्ले तो असंख्यात वर्ष की आयु है। आप कहेंगे पहले भी रखो बाद में भी रखो, नहीं, एक बार उसको रखेंगे तो देव में चला जाएंगे, हमें उसको तीर्यंच में ही रखना है। तो 48 पूर्व कोटि, फिर 47 पूर्व कोटि, टोटल 95 पूर्व कोटि हो गए, और फिर लास्ट में तीन पल्ले वाली उत्तम भोगभूमि की आयु ली, यानी वो लगातार मिथ्यात्व में घूमेगा तभी जाएगा ना वहां पर, बीच में समय दृष्टि हो जाएगा देव में चला जाएगा। तो उत्कृष्ट पूर्व कोटि पृथक तो अधिक तीन पल्ले, हम समझ में आई ना बातें, 95 पूर्व कोटि है प्लस तीन पल्ले, तीन पल्ले वाला लास्ट में रखना है। अभी इसी का विशेष अर्थ, एक किसका बंध जो हमने पांच ज्ञानावरण छह दर्शनान वगैरह जो लिए थे, वो प्रथम दंड को प्रकृतियों का जो ग्रुप बनाया था लिस्ट, वो लगातार इतने काल तक उसका बंधक है। उसमें उत्कृष्ट कितना लिया था? असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, अभी यहाँ इतना नहीं ले सकते। विशेषार्थ, एक देव, नारकी, मनुष्य अथवा विवक्षित पंचेंद्रिय तिर्यंच से विभिन्न अन्य तिर्यंच मरकर विवक्षित पंचेंद्रिय तिर्यंच हुआ। विवक्षित का अर्थ होता है, अभी अपना ऊपर का जो क्राइटेरिया है 15 नंबर में, पहले हमने सामान्य तिर्यंच की बात की थी, अब यहाँ पंचेंद्रिय तिर्यंच की बात हो रही है। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच यानी वो एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में आया, तो अन्य तिर्यंच से पंचेंद्रिय तिर्यंच में आया, ये बताना चाहते। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीनिय, चतुरिंद्रिय पर्याय छोड़कर पर्याप्त पर्याय जो कुछ थी, तो यहाँ लिखा, देखो यहाँ क्या लिखते हैं, पंचेंद्रिय तिर्यंच में कहाँ से आया? तो हम कहेंगे देव से मरकर आया, या नरक से आया, या मनुष्य से आया, उसकी पंचेंद्रिय तिर्यंच ये पर्याय चालू हो गई, या विवक्षित पंचेंद्रिय तिर्यंच से, विवक्षित पर्यंच तीन पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिमति से आया है, फिर भी उसमें वो सब इंक्लूड हो गए, ये विवक्षित नहीं कह सकते हैं। हाँ, उसके अन्य विवक्षित पंचेंद्रिय तिर्यंच ने, अभी जिसको हम अभी देख रहे पंचेंद्रिय तिर्यंच, ये हमारा पर्टिकुलर है, अभी हम किसको मुख्य कर रहे, पंचेंद्रिय तिर्यंच। पंचेंद्रिय तिर्यंच में कहाँ से आए? उसको छोड़कर अन्य से। देखो यहाँ लिखा ना, विवक्षित पंचेंद्रिय तिर्यंच से विभिन्न, यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच को छोड़कर अन्य, उसको छोड़कर अन्य तीर्यंच मर कर, अन्य तीर्यंच यानी एक इंद्रियादि अन्य, यानी एक इंद्रियादि इंद्रियादि मरकर विवक्षित पंचेन्द्रिय तीर्यंच हुआ। यहां तक बात ख्याल में आई? यानी उसकी वो पर्याय चालू हो गए, वहां संगी यानी पंचेन्द्रिय संगी में आया। स्त्री पुरुष और नपुसक वेदों में क्रम से आठ आठ पूर्व कोटि काल व्यतीत करके स्त्री के आठ भव, पुरुष के आठ भव और नपुसक के आठ भव, और हर एक भव एक पूर्व कोटि वाला, तथा असंगी में भी स्त्री पुरुष नपुसक में पूर्ववत आठ आठ पूर्व कोटि प्रमाण काल क्षेप करके काल बिता कर पश्चात लब्ध्य पर्याप्त पंचेन्द्रिय तीर्यंचों में उत्पन्न हुआ। क्योंकि पंचेन्द्रिय तीर्यंच कहने से सब इंक्लूड हो गए थे उसमें, पर्याप्त पर्याप्त सभी, वहां अंतर्मूर्त रहकर पुनः पंचेन्द्रिय तीर्यंच असंगी पर्याप्तकों में उत्पन्न होकर उनमें के यानी उनके स्त्री पुरुष नपुसक वेदी जीवों में पुनः आठ आठ पूर्व कोटि प्रमाण काल व्यतीत करके, अब लास्ट में संगी बनाना है ना, उसको भूभूमि में भेजना था, इसलिए पश्चात संगी पंचेन्द्रिय तीर्यंच पर्याप्त स्त्री और नपुसक वेदियों में आठ आठ पूर्व कोटियां तथा पुरुष वेदियों में सात पूर्व कोटियां भ्रमण करके पश्चात देवकुरु व उत्तर कुरु में, ये देवकुरु उत्तर कुरु क्या होता है, उत्तम भोगभूमि जहां हमेशा ही भोगभूमि होती है। भरत ऐरावत में तो छह कालों का परिवर्तन होगा तब जाके वहां पहला काल में उत्तम भोगभूमि होगी, परंतु ये ऐसी व्यवस्था है जहां हमेशा ही ने ऑलवेज उत्तम भोगभूमि ही होती है। ये मेरु पर्वत है ना, पांच मेरु, उसके दक्षिण में है उसको देवकुरु कहते हैं, और उत्तर में है उसको उत्तर कुरु कहते हैं, और इनको कहेंगे कुरुक्षेत्र, जैसे हम विदेह क्षेत्र कहते हैं ऐसे इनको कहेंगे कुरुक्षेत्र सभी, क्योंकि जम्बूद्वीप में सुदर्शन मेरु की दोनों ओर, पूर्व घातकी में पश्चिम घातकी में, पूर्व पुष्करार्ध में पश्चिम पूर्व, ये पांचों मेरु के नाम मालूम है? हाँ हाँ बोलो बोलो।
सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, विद्यमान मेरु और
मंदार मेरु। तो कौन सा कहाँ है मालूम है?
सुदर्शन।
हाँ बीच में सेंटर में, हाँ हाँ। फिर पूर्व की ओर पहले जाना विजय, फिर अचल ये बाजू आएगा क्योंकि धातकी खंड का पश्चिम लेना है, फिर मंदर और लास्ट में विद्युन्मान। दोनों ही कहते मंदर मेरु या मंदार मेरु। विद्युन्माली पांचवे का नाम, विद्युन्माली मेरु। अब मेरु के हर एक मेरु के दक्षिण और उत्तर में उत्तम भूभूमि है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में छह छह कुलाचल है और उसके कारण वो भूभूमि, कर्मभूमि, विदेह क्षेत्र सब रचना होती है। अपना विषय क्या है? कुरु किसको कहना, उत्तम भूभूमि को ना होते हैं। वैसे तो पांच मेरु संबंधी दस तो ये हो गए, मध्यम भी दो दो यानी वो भी दस हो गए, और जघन्य भी दस हो गए, तो तीस तो भूभूमि है पांच मेरु संबंधी, और जघन्य भूभूमि है ना तीन इंचों की, असंख्या द्वीपों में पड़ी है सब जगह। तो तीन इंचों के लिए कितने सहूलियत है, मनुष्यों के लिए इतना सब क्षेत्र, और ये जो तीस भूभूमि ना ढाई द्वीप की वो कॉमन है तीन इंच और मनुष्यों के लिए, और वहां की स्पेशल तीन इंचों के लिए, तो कहां जाना अच्छा है? देखो देखो, देव कुरु व उत्तर कुरु में तीर्यंचों में पूर्व बद्धायु के वश पुरुष या स्त्री तीर्यंच हुआ, अभी स्त्री और नपुंसक के आठ आठ किए कि पुरुष, अच्छा पुरुष वेदी में सात किया, फिर स्त्री या पुरुष में उत्पन्न हुआ तथा तीन पल्लोकम काल व्यतीत करके मरा और देव हुआ, क्योंकि भोग भूमि का जीव तो नियम से मरकर देव ही होता है। इस प्रकार पूर्व कोटि पृथक वर्ष अधिक तीन पल्ल्य कहे है, इसके लिए धवला टीका का पृष्ठ उन्होंने बता दिया। क्या कहा? धवला टीका का पृष्ठ, अच्छा काल परोवणा पृष्ठ, अच्छा काल परोवणा यहाँ नीचे लिखे ना दो अकड़ा, यहाँ बारह भवों में से ग्यारह भवों में पूर्व कोटि पृथक वर्ष अर्थात आठ आठ पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिभ्रमण का काल और अंत के बारहवें भव में सात पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण भ्रमण करने का काल मिलकर बारह भव, समझती है कौन से? अरे संगी के छह हुए, ये संगी के तीन हुए, असंगी के तीन हुए, स्त्री पुरुष नपुसक तीन संगी के, स्त्री पुरुष नपुसक तीन असंगी के, तो छह हो गए, फिर बीच में अंतर्मूर्धमा शुद्र भव और फिर बारह भव, उसमें से एक एक में आठ आठ किए ना, इन्हें बारह भव लिए ना तो बारह अटी छानबे होते हैं, उसमें से एक कम कर दिया उन्होंने, यानी कि अंत के बारहवें भव में सात पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण परिभ्रमण करने का काल मिलकर पंचानवे पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण होता है। इस काल को पूर्व कोटि पृथक्त्व शब्द से ग्रहण किया है, ये बात ख्याल में आई? बारह भव में आठ भवों का एक ग्रुप बनाया उन्होंने, स्त्री के आठ को एक कहा, यानी संगी में स्त्री के आठ, पुरुष के आठ, नपुंसक के आठ, इनको तीन कहा, असंगी में तीन, वैसे तो छह का अर्थ क्या है, हरेक में आठ आठ, यानी वो अड़तालीस हुए थे, उसके बाद एक अपर्याप्त हुआ और फिर अड़तालीस, तो अड़तालीस और अड़तालीस कहने के बदले उन्होंने छह और छह मिलकर बारह कहे, तो उसमें से ग्यारह तो उन्होंने बता दिए, हरेक आठ आठ वाले अक्री अठी अट्ठाईसी एटी एट हुए, फिर सात पूर्व कोटि एटी एट और सात 95 और एक वाला वो तीन पल्ले वाला, हाँ ये हमने धवला में भी पढ़ा था और वही उन्होंने धवला को ही कोट किया है, विशेषार्थ में ही लिया है उन्होंने। अब कहते हैं ये हो गया ना, इसी प्रकार अब वहां जैसे हमने तीर्यंचों में सामान्य में स्त्यान वृद्धित्रिक वगैरह देखा था, स्त्यान वृद्धित्रिक तथा आठ कषाय का भी जानना चाहिए। विशेष यह है कि यहाँ जघन्य एक समय है, वैसे वहां पर भी लिया था, वो तो सांसाधन की अपेक्षा ले लेना, साता दंडक में तिर्यंचों के ओहवत जानना चाहिए। ये साता दंडक समझते, देखो देखो अभी 56 पेज पर आया था नीचे पूरी लिस्ट, साता असाता चेनों का शायद गति जाति वगैरह वगैरह जो कुछ है, तो वहां कहते हैं तिर्यंचों के ओहवत जानना चाहिए, जैसे सामान्य तीर्यंचों में बताया वैसे ही पंचेंद्रीय तीर्यंचों में जानना चाहिए, क्योंकि वहां एक समय और अंतर्मूर्त बताया था, वैसे यहाँ पर भी घटित होगा। तीर्यंच गति त्रिक तथा औदारिक शरीर में विशेष जानना चाहिए, विशेष क्या बताया? जगन निबंध काल एक समय बताया था ना वहाँ पर, कहाँ पर?
नहीं, नहीं, तो
तिर्यंच गति त्रिक तथा उदारिक शरीर में विशेष वैसे ही ना उन
एक समय ही होगा ना, एक समय होगा अंतर में। वो आगे से कुछ कह दिया था ना,
वो जो आपको अंतर्मूर्त याद है वो नरक गति में देखा,
नरक गति में देखी।
यहाँ सामान्य तिर्यंचों में तिर्यंच गति त्रिक को ओघ के समान जानना चाहिए लिखा था। अब आगे कहीं बात आती है तो देखेंगे। हाँ, उसमें भी साधन में आया तिर्यंच गति बांध रहा है या उदारिक शरीर बांध रहा है तो उसके एक समय घटित हो सकता है। पुरुष वेद का दंडक, ये पुरुष वेद का दंडक 57 पेज पर हमने देखा था, पुरुष गति देवगति वैक्रेक वगैरह वगैरह है ना, यानी देवगति बांध रहे ना उसके अनुसार अन्य अन्य कर्म बांध रहा है तो उसका तिर्यंचों के जो पुरुष वेद का दंडक का तिर्यंचों के ओघवत जानना। ओघवत यानी कितना देखा था हमने, उत्कृष्ट तीन पल्ल्य देखा था, उत्कृष्ट जगन ने एक समय उत्कृष्ट तीन पल्ल्य देखा था, यानी सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होने वाला हमने देखा था। अब ये बात पंचमी तिर्यंच में होगी, तिर्यंच पर्याप्त में होगी परंतु योनिमति में नहीं होगी क्योंकि वो मिथ्यात्व में वहां जन्मता है या सासाधन में और बाद में वो भूमिका है तो अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा। वो भूमिका जीव है अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करेगा कि नहीं करेगा, स्त्री पर्याय में जन्मा है गर्भ का लेना कि नहीं, गर्भ प्लस बाहर जो निकसने के बाद जो कुछ है 49 दिन में तो पर्याप्त होता है, पूरा युवा हो जाता है। 2 महीने ऐसे कुछ वहाँ का गर्भ यथायोग्य गर्भकाल समझना और बाहर निकसने के बाद अंतर्मूर्त में नहीं करेगा। और यहाँ सम्मूर्छन नहीं होते ना, ये सारे गर्भ जन हाँ तिर्यंचों में ही होता है सम्मूर्छन तिर्यंचों में। यहाँ क्या कहा, पुरुष वेद दंडक, समझ में है ना, तो पुरुष वेद दंडक है ना वो पुरुष वेद देवगति वगैरह वगैरह इतना विशेष है कि योनिमति तिर्यंचों में कुछ कम जानना चाहिए। कुछ कम कितना, हाँ कुछ कम तीन पल्ले। जब वहां सम्यक तो प्राप्त करेगी तब की बात है, सम्यक तो नहीं प्राप्त करेगी तो वहां तो बंद होगा ना, कौन सा होगा वेदों का, स्त्री वेद या पुरुष वेद में चेंज होता रहेगा। भूमि के जीव नपुसक वेद का बंद नहीं कर रहे परंतु उन्हें या तो स्त्री वेद का बंद करेगी या पुरुष वेद का, पर लगातार पुरुष वेद का बंद कौन करेंगे, सम्यक दृष्टि, इसलिए कुछ कम तीन पल्ले लिया। वहां जाने के बाद जो सम्यक दृष्टि होता है वो चार आयु का बंधकाल ओघवत जानना चाहिए, वो तो अंतर्मूर्त होता है, जघन्य भी अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट भी अंतर्मूर्त। एक समय के लिए आयु का बंध हो ये बात नहीं बन सकती। पंचेंद्रिय दंडक में तिर्यंचों के ओघवत है। अब पंचेंद्रिय दंडक देख लो, जो हमने देखे थे पंचेंद्रिय जाति परघात उच्छ्वास त्रस वगैरह वगैरह, जगन ने एक समय उत्कृष्ट साधिक तीन पल्ले कहा था तिर्यंचों में, तो हमने ये अलग अलग दंडक देखे ना, ये प्रथम दंडक वाला वो जो ज्ञानावरणादि का देखा, इस ज्ञान वृद्धि वाला देखा, साता वाला दंडक देखा, पुरुष वेल वाला दंडक देखा, आयु का देखा और ये पंचेंद्रिय जाति संबंधी देखा। औदारिक शरीर के साथ उसका अंगोपांग अलग लिया, इसलिए अंगोपांग अलग लेते हैं क्योंकि औदारिक शरीर तो ऊपर लिया होगा ना, तेजस कारण शरीर के साथ नहीं लिया। देखो औदारिक शरीर में लिया ना, स्थान बुद्धि के साथ लिया, क्योंकि एकेंद्रीय संबंधी जो बंद कर रहा है वो मात्रा औदारिक शरीर को बांधेगा, और जो द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का बंद कर रहा है उस गति संबंधी उसके अंगोपांग का बंद होगा। जैसे अभी हम बंद स्थान देख रहे थे ना, नामकरण 23 वाला, वो अंगोपांग नहीं बांध रहा है, वो मात्र एकेंद्रिय संबंधी औदारिक शरीर नामकर्म बांध रहा है, क्योंकि एकेंद्रियों के अंगोपांग नहीं होता। जो एकेंद्रिय संबंधी बंद कर रहा है उसके अंगोपांग का बंद नहीं हुआ उस समय, जिस समय वो एकेंद्रिय का बंद कर रहा है। नहीं कभी नहीं,
नहीं
आयु का बंध तो नियम से अंतर्मुहूर्त तक होगा ही होगा, वो भले पहली बार हो, दूसरी बार या आठवीं बार हो। और आयु का बंध होते होते कभी मरण होता ही नहीं है, आयु का बंध समाप्त हो जाए फिर बीच में अंतर छूटता है अंतर्मुहूर्त वाला, या मिनिमम भी अंतर असंक्षेपाध्या कहते हैं उसको, उतना तो अंतर जाएगा ही फिर मरण होगा। एक समय के लिए अन्य प्रकृति बनती बनती मरण हो जाए ऐसा यहाँ नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, एकेंद्रीय जीव यदि पंचेंद्रिय का बंद कर रहे हैं, हमने क्या देखा, कोई एकेंद्रीय जीव है और वो बंद कर रहा है मनुष्य गति का, तो शरीर और अंगोपांग दोनों बांधेगा, वो बांधेगा। परंतु जो एकेंद्रीय का बंद कर रहा है, जैसे कोई मनुष्य है या कोई अन्य तिरंच है, और वो कौन सा बंद कर रहा है, एकेंद्रीय का कर रहा है, भले पर्याप्त का भी कर रहा है, तो वो औदारिक शरीर को बांधेगा, क्योंकि एकेंद्रीय स्थावर आतप आदि जो कुछ प्रकृतियां बांध रहा है उसके साथ औदारिक शरीर तो बंधेगा, औदारिक अंगोपांग का बंद नहीं होगा। इसलिए हमने जो बंध के अलग अलग देखे थे नामकर्म के, 23 वाला, 25 वाला, 26 वाला, एक एनजीओ में है, उसमें अंगोपांग को नहीं लिया था। देवगति के साथ अंगोपांग लेना, वो वैकृत लेना, जो मनुष्य गति बांध रहे उसके साथ औदारिक अंगोपांग लेना, और वो भी किसके साथ, मनुष्य पर्याप्त के साथ, लब्धि अपर्याप्त वाले वहां अंगोपांग नहीं होगा ना, क्या होगा, तो द्विंद्रिय से लेकर होता है, लब्धि अपर्याप्त को में भी होता है अंगोपांग, तो होता है, पूर्णता नहीं होगी, कर्म होगा वो। अब यहीं हम रुकेंगे। अच्छा 3 लाइन, ठीक। पंचेंद्रिय दंडक समझ में आई ना, पंचेंद्रिय जाति आदि जो अन्य प्रकृतियां देखी, परघात उच्छ्वास वगैरह, जगन ने एक समय उत्कृष्ट साधिक 3 पल्ले कहा था। हाँ, ये तिरंच मार्गणा के 3 लाइन और पढ़ते हैं। पंचेंद्रिय तिरंच लब्धि अपर्याप्तकों में, एक मिथ्यात्व मनस्थान है यहाँ पर, 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, मिथ्यात्व, 16 कषाय, भय जुगुप्सा, औदारिक तेजस कारमान शरीर, वर्णचार, अग्र लघु उपघात, निर्माण तथा पंच अंतरायों का बंध काल, जघन्य से क्षुद्र भव ग्रहण, लब्धि अपर्याप्त है और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। यानी उनमें एक क्षुद्र भव वाले जो हम कहते हैं लब्धि अपर्याप्त, उसमें भी जघन्य आयु और उत्कृष्ट आयु होती है, और उनमें भी यानी वो क्षुद्र भव किसको कहेंगे कि जो जघन्य आयु का बंध करके आए है, कोई उत्कृष्ट आयु का बंध करे, और उसमें भी वो कदलीघात से मरण हो सकता है, तो कदलीघात होने से उनकी जो बंधी थी आयु उससे भी छोटी हो जाती है, उसको क्षुद्र भव कहते हैं, इसे वो मिनिमम पॉसिबल आयु लेना वहां, और उत्कृष्ट अंतर्मुख इसीलिए होता है। अब यही हम 1 नंबर है नीचे, यहीं पर रुकेंगे, इसी का है। अच्छा, मनुष्य तिरंच आयु का बंध का लोगवत है, यानी मनुष्य आयु और तिरंच आयु का लोगवत, यानी अंतर्मूर्त तक, शेष का जगन्य बंध काल एक समय और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है, शेष कायनी जो प्रतिपक्षी वाली जो प्रकृतियां होती है ये जो बांधते हैं उसकी बातें। इस प्रकार संपूर्ण अपर्याप्त त्रसों तथा स्थावरों में जानना चाहिए, यानी पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त की बात है। ऐसे जो जितने एक इंद्रिय अपर्याप्त हो, द्विंद्रिय अपर्याप्त हो, सब में लब्धि अपर्याप्त में यही बात समझनी चाहिए। यही रुकेंगे अभी हम। जावानी के ज्ञान ते सूज